वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। श्री गोकुल धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्व
भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तम श्लोके
भगवत्युत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 14वां अध्याय राजा वेन की कथा। विनिश्चित्य एवं ऋषयः
ऋषयः
विपिन्नस्य
विपिन्नस्य
महीपतेः
महीपतेः
ममन्तुः
ममन्तुः
ऊरुं
ऊरुं
तरसा
तरसा
तत्र
तत्र
आसीत्
आसीत्
बाहुकः
बाहुकः
नरः
नरः।
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विपिन्नस्य महीपते
विपिन्नस्य महीपते
पतेः
पतेः
ममन्तुरूरुं तरसा
ममन्तुरूरुं तरसा
तत्रासि बाहुको नरः
तत्रासि बाहुको नरः
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विपिन्नस्य महीपतेः
विपिन्नस्य महीपतेः
ममन्तुरूरुं तरसा
ममन्तुरूरुं तरसा
तत्रासि बाहुको नरः
तत्रासि बाहुको नरः
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विपिन्नस्य महीपतेः
विपिन्नस्य महीपतेः
ममन्तुरूरुं तरसा
ममन्तुरूरुं तरसा
तत्रासि बाहुको नरः
तत्रासि बाहुको नरः
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विपन्नस्य महीपतेः
विपन्नस्य महीपतेः
ममन्तुरूरुं तरसा
ममन्तुरूरुं तरसा
तत्रासि बाहुको नरः
तत्रासि बाहुको नरः विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्तुरूरुं तरसा तत्रासि बाहुको नरः
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विनिश्चित्यैवं ऋषयो
विपन्नस्य महीपतेः
विपन्नस्य महीपतेः
ममन्तुरूरुं तरसा
ममन्तुरूरुं तरसा
तत्रासि बाहुको नरः
तत्रासि बाहुको नरः
विनिश्चित्य
विनिश्चित्य
निश्चय करके
निश्चय करके
एवं
एवं
इस प्रकार
इस प्रकार
ऋषयः
ऋषयः
ऋषियों ने
ऋषियों ने
विपिन्नस्य
विपिन्नस्य
मृत
मृत
महीपतेः
महीपतेः
राजा का
राजा का
ममन्तुः
ममन्तुः
मंथन किया
मंथन किया
ऊरुं
ऊरुं
जंघाए
जंघाए
तरसा
तरसा
विशिष्ट शक्ति से
विशिष्ट शक्ति से
तत्र
तत्र
तत्पश्चात
तत्पश्चात
आसीत
आसीत
उत्पन्न हुआ
उत्पन्न हुआ
बाहुकः
बाहुकः
बाहुक
बाहुक
बौना नामक
बौना नामक
नरः
नरः
व्यक्ति
व्यक्ति
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। बौना में सो ड्वार्फ ना
ड्वार्फ
तात्पर्य राजा वेन के जांघ के मंथन से एक व्यक्ति का उत्पन्न होना यह बताता है कि आत्मा व्यष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा वेन के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके किंतु वे मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा वेन का निधन हो चुका था और उसने निश्चय ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था। साधु पुरुषों तथा मुनियों को वेन के शरीर से ही सरोकार था क्योंकि वह महाराज ध्रुव की वंश परंपरा में था। अतः जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सका वे राजा वेन के मृत शरीर में विद्यमान थे। जब मृत शरीर की दोनों जांघों को विशेष विधि से मथा गया तो एक दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। यद्यपि वेन का शरीर मृत था किंतु उसकी माता ने उसे मंत्रों तथा औषधियों से सुरक्षित कर रखा था। फलतः नवीन शरीर उत्पन्न करने के लिए समस्त अवयव उपस्थित थे। अतः जब राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नामक व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ तो यह बहुत आश्चर्यजनक न था। यह तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न था। एक शरीर के वीर्य से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है और इसमें आत्मा के निवास करने से जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। कोई यह न सोचे कि महाराज वेन के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था। मुनियों ने अत्यंत कौशल से यह कार्य संपन्न किया। ओम ज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक काफी अद्भुत प्रसंग हम सब पढ़ रहे हैं। महाराज अंग बहुत ही पुण्यवान और धार्मिक राजा थे, परंतु उनकी पत्नी साक्षात मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए राजा अंग इतने अच्छे व्यक्ति होने के बाद भी, क्योंकि उनकी पत्नी का कुटुंब परिवार सही नहीं था, इसलिए उनका जो पुत्र हुआ वो बहुत दुष्ट निकला और पुत्र का नाम था वेन। तो बचपन से ही वेन अत्याचारी निकला, बचपन में अपने मित्रों के प्रति अत्याचार करता था। जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ी बहुत शरीर में ताकत आ गई, तो कभी कभी अपने मित्रों को उठाकर नदी में फेंक देता था, बच्चे डूब जाते थे। कभी कभी आक्रमण करके उनको प्रहार करके मार देता था। इस प्रकार से सारे राज्य के नाक में दम बन गया ये बच्चा। बहुत शिकायत प्रजा ने की राजा को। अंततः वो राजकुमार था, इसलिए कोई स्वतंत्र कदम नहीं उठा सकते थे। राजा के पास गए, राजा ने बहुत दंड दिया बच्चे को, वेन को बहुत समझाया, बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, उसको सीधा कभी नहीं किया जा सकता है, वैसे कभी कभी दुष्ट लोगों का स्वभाव कितने भी उपदेश करने पर परिवर्तित नहीं होता है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि उनके संस्कार इतने बुरे होते हैं कि कितना भी उपदेश दो, कितना भी दंड दो, आदमी बदल नहीं सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं, स्वभाव वैसे होता है। कई लोग हैं जो पहले से ही अच्छे होते हैं, अभिजातस्य भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना 16वें अध्याय में, अभिजातस्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म से ही किसी के दैवी गुण होते हैं या असुरी गुण होते हैं। तो जिसके दैवी गुण होते हैं वो बचपन से ही दिव्य स्वभाव का होता है, वो ये दिखाई पड़ता है कि ये बच्चा ऐसा है। और कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ही दुष्ट निकलते हैं, ऐसे समझ में आता है कि आगे चल के थोड़ा खतरनाक होगा ये आदमी। और कई ऐसे होते हैं जिन जो बीच में होते हैं, अधिकांश लोग सब बीच में होते हैं, तो संग से उनका परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनका जितना भी प्रयत्न करो उनका स्वभाव नहीं बदलता। जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य ठीक रखना आवश्यक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का एक उद्देश्य है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। केवल रोगी व्यक्तियों का रोग निवारण करना उतना ही नहीं, सर्वप्रथम आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य बचाए रखना। और फिर यदि कोई अस्वस्थ हो भी जाए फिर उसका इलाज करो, परंतु मुख्य उद्देश्य है सबको स्वस्थ रखना। बीमार का इलाज करना ये बाद में आता है। तो अधिकांश पहले लोग जो अच्छे होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के होते हैं, फिर थोड़े बीमार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, ऐसी बीमारी होती है जिनमें थोड़े औषधि आदि से फिर वो ठीक हो जाते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि ऐसे भी कोई रोग हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। तो जितना भी वैद्य प्रयत्न करे, जितने भी औषधि वगैरह डाले, ये रोग ठीक नहीं होगा। तो ऐसे विभाजन है आयुर्वेद शास्त्र में। तो ठीक उसी प्रकार से थोड़े सूक्ष्म स्तर पर स्वभाव लोगों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार ऐसे है जो इतना दुष्ट निकलता है कि उसको बदला ही नहीं जा सकता, उसका पतन होता रहेगा। और केवल यदि ऐसे कोई महान शुद्ध भक्त की कृपा उसको मिल जाए तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी बदल सकता है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त की कृपा जो है ये अपार होती है। और कितना भी बड़ा वो भौतिक रुकावट क्यों ना हो या एक दोष क्यों ना हो, भगवान की कृपा उससे परे होती है। परंतु साधारणतः ऐसे नहीं देखा जाता है। तो हो सकता है हमारे पहचान में भी ऐसे कई हो सकते हैं, कोई लोग जो ऐसे हैं कभी बदलेंगे नहीं, तो उनकी गति अच्छी नहीं होती है। पिछली बार 16वें अध्याय की चर्चा हमने की थी ना, तो सारे श्लोक पढ़े थे, याद है ना, तो सारे असुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव, दैवी संपदा असुरी संपदा, कौन से गुण होते हैं और असुर लोगों की गति क्या होती है पुनर्जन्म पूर्व बाद वाले जन्म में, उनका धीरे से पतन होते रहता, नरक की ओर जाते हैं। तो इस तरह से वेन की परिस्थिति थी, कोई उसको बदल नहीं सका। दुर्योधन का स्वभाव भी वैसे था, दुर्योधन को भी बहुत लोगों ने उपदेश दिया, धृतराष्ट्र ने समझाने का प्रयास किया, गांधारी ने बहुत डांटा अपने पुत्र को, और फिर संजय ने कहा, व्यासदेव ने कहा, विदुर जी ने कहा, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, परंतु दुर्योधन भी वेन के समान था, इसलिए उसका स्वभाव बदला ही नहीं। ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब किसी जहरीले सांप को आप दूध पिलाएंगे तो उसका जहर, उसका विष बढ़ जाता है। साधारणतः दूध ये बहुत पौष्टिक आहार होता है, परंतु यदि एक जहरीले सांप को ये दिया जाए तो फिर क्या होता है, वो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका विष बढ़ जाता है, इसलिए दुष्परिणाम होता है। तो इसका एक उदाहरण भी है, कोई बोल सकते हैं ये दृष्टांत कहाँ कौन से श्लोक में आता है? जहरीला सांप दूध पीकर उसका विष बढ़ जाता है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, तो गीर्ण मतलब बाहर निकलना, अवैष्णव मतलब जो भगवान का भक्त नहीं है, मुखोद मतलब उसके मुख से गीर्णम निकला हुआ, अवैष्णव मुखोद गीर्णम पूतम हरि कथामृतम। यदि हरि कथा किसी अभक्त के मुंह से निकले, यद्यपि वो अमृत है हरि कथा, पूतम है, पूतम अर्थात जो सबको शुद्ध कर सकता है, सबका उद्धार कर सकता है। साधारणतः जब कोई भक्त हरि कथा करता है तो ये हरि कथा पावन कथा है, सबको सबका हृदय शुद्ध करता है, सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अमृत है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। परंतु जब एक अभक्त इसको कहता है, उसके मुख से ये कथा निकलती है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम, ऐसे हरि कथा जो अभक्त के मुंह से निकलती है, श्रवणम न एव, उसको नहीं सुनना चाहिए। तो ये यदि पूछा जाए कि हरि कथा तो अमृत है, हरि कथा तो सबको शुद्ध कर सकता है, तो चाहे वो अभक्त के मुंह से आए चाहे भक्त के मुंह से आए, क्या फर्क पड़ता है? क्या हमको हरि कथा सबके मुंह से नहीं सुनना चाहिए? तो ये श्लोक में बताया गया कि नहीं सुनना चाहिए, केवल भक्तों के मुंह से सुनना चाहिए, अभक्तों के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। तो कोई प्रश्न उठाएगा कि हरि कथा तो वही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तो चाहे हम भक्त के मुंह से सुने या अभक्त के मुंह से सुने, कथा तो वही है, तो फिर क्यों हम नहीं सुनना चाहिए? तो फिर बताते हैं, सर्पोचिष्ठम यथा पयः, सर्प एक सांप उच्छिष्ट जब स्वाद लेता है उसका किसका, यथा पयः, पयः मतलब दूध, पायस पयः, तो जब एक जहरीला सांप किसी दूध को पी लेता है, थोड़ा स्वाद लेता है, तो उस दूध में उसका जहर भी मिल जाता है। अब साधारणतः दूध बहुत पौष्टिक आहार होता है, सबसे सात्विक और पौष्टिक आहार शुद्ध गाय का दूध है। इसमें सारे जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो सम्मिलित हैं। फिर भी यदि ऐसा दूध को हम पिए जिसके स्वाद जिसका स्वाद एक जहरीले सांप ने लिया है, तो वही पौष्टिक दूध को पीने से हम मर जाएंगे, क्योंकि उसमें सांप का जहर भर गया। तो ठीक उसी प्रकार से यद्यपि हरि कथा अमृत है, फिर भी एक अभक्त के मुंह से निकलने के कारण उसमें वो अभक्त की चेतना का जो विष है वो उस अमृत कथा के द्वारा हमारे कानों के अंदर से जाके हमारे हृदय में जाता है, और इस तरह से हमारे हृदय में विष भर जाता है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, चेतना का स्थानांतर होना। स्थानांतर मतलब समझ गए, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। जैसे किसी स्थूल रूप से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो कुछ मेरे जेब में कुछ है तो मैंने जेब से निकाल लिया, हाथ से दे दिया, अपने हाथ में ले लिया, हो गया काम। लेकिन यदि मेरी चेतना आपको देना है तो कैसे करूं? चेतना तो ऐसे कोई स्थूल व्यक्ति नहीं है कि मन से ऐसे निकाल के उसको वस्तु पकड़ के मैं दे दूं। क्या करना चाहिए? केवल साथ में बैठना चाहिए बस, और दूसरी बात आगे बोलना चाहिए। चेतना का प्रभाव संग से होता है, संग में तरह तरह से होता है, काया वाचा मना। तो कोई आदमी साथ में पास में बैठ तो कोई दूर से हमारे बारे में सोच भी रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। और कोई पास में बैठा है तो यदि वो दुष्ट व्यक्ति है तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अभी इसको तो हम बच के नहीं रख सकते, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हमारे दिनचर्या में हम इधर उधर घूमते हैं, तो इसको तो हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए अपने आप को आध्यात्मिक साधना से शक्तिशाली बनाना चाहिए ताकि अन्यों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। इसलिए दूसरों का चप्पल पहनना, दूसरों के कपड़े पहनना, दूसरों के आसन पर बैठना, ये सबसे चेतना का कर्म का सब स्थानांतरण होता है। और खास करके वाणी, जो वाणी होती है वो क्या होती है, एक व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसकी चेतना उसमें भर के वो वाणी आती है। वो वाणी में क्या है, उसकी चेतना है। तो जब हम वाणी को सुनते हैं, ध्वनि हमारे कान में जाती है, परंतु उसमें क्या लगा हुआ है, उसकी चेतना की चटनी भी साथ साथ है उसमें लगाई हुई। जैसे हम भजिया खाते हैं तो भजिया को चटनी में लगाते खा जाते हैं, है ना? तो भजिया के साथ साथ क्या जाता है, चटनी जाता है। उसी प्रकार से वाणी के साथ साथ उसकी चेतना जाती है। इसलिए शुद्ध से शुद्ध वस्तु को भी, एक वचन को भी एक अभक्त दूषित कर सकता है। इसलिए अभक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी कोई चीज़ों का प्रभाव, अच्छे चीज़ों का प्रभाव लोगों के पड़ ही नहीं सकता। उसके विपरीत दुर्योधन और वेन एक कोने के उदाहरण है, और बिल्कुल दूसरे कोने के उदाहरण है हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त। जितना भी बुरा करने का प्रयास करो उनको बुरा लगता ही नहीं। बुरे वचनों का, बुरे संग का प्रभाव उनको लगता ही नहीं। जैसे दुर्योधन वेन है, जितना भी अच्छा संग उनको मिले, अच्छे उनको कोई प्रवचन दे, अच्छी बातें बताए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, वो दुष्ट के दुष्ट ही रहते हैं। जैसे बतख के पीठ के ऊपर पानी डालने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी बह के निकल जाता है। तो वेन और दुर्योधन जैसे लोगों का स्वभाव इतना दुष्ट था कि जितना भी कुछ उनको अच्छे उपदेश दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर हरिदास ठाकुर जैसे महान वैष्णव, इतने शुद्ध, इतने पावन कि कितना भी बुरा संग उनको मिले, उनको उनका परिवर्तन तनिक भी नहीं होता था। एक बार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उनका पतन करने के लिए एक वेश्या को उनके पास भेजा, फिर भी वेश्या का परिवर्तन हो गया, हरिदास ठाकुर का परिवर्तन नहीं हुआ। वो वेश्या भक्त बन गई। वो वेश्या जब भेजी गई उसके पास, उनके पास आई, तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि ये क्या है, किसने भेजा है और क्यों भेजा है और ये कौन है, तुरंत समझ गए वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, देखो जब किया भी तो कैसे किया, इतने आराम से कर लिया, मैं आऊँगा आपके साथ, लेकिन पहले मेरा माला ख़त्म करने दो। फिर वो माला करने लगे, माला वो बैठ के माला सुनने लगे। अभी हरिदास ठाकुर की माला कोई सुनेगा तो पत्थर भी भक्त बन जाएगा, है ना? हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य है। तो एक बार हो गया, फिर सुबह हो गया, रात भर वो जप करते रहे, साथ रात भर वो सुनते रहे, फिर दिन हो गया तो बोले ठीक है मैं अगले रात को, अभी आज रात को फिर से आते, पुनः ऐसे ही हो गया, नहीं अभी मेरा माला बाकी है, बैठो बैठो। तो बैठी रात भर, फिर हरिदास ठाकुर की माला चलती रही और वो पास बैठ के माला सुनती रही, तो उसका प्रभाव हरिदास ठाकुर के ऊपर तनिक भी नहीं पड़ा, परंतु हरिदास ठाकुर के मुख से वो शुद्ध अमृत हरि नाम का निकल रहा था और वो वेश्या के स्त्री में के कान में जा रहा था। दूसरे रात को भी ऐसे हो गया, सारा रात बीत गया, या सारी रात बीत गई शुद्ध हिंदी बोले तो, बेलगांव में रह के भी हमारे भी ऐसे, तो ऐसे सारी रात बीत गई। और फिर अगली बार जब आए तो उस वेश्या का पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, वो भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर ने कहा अभी आप यहीं पे रहो, यहाँ तुलसी है, तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी की सेवा करो और हरि नाम लेते रहो, बस तुम्हारे भरण पोषण की कोई समस्या नहीं होगी, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। तो वो वहां पे बैठी और हरिदास ठाकुर की कृपा से उसके उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया था और हरि नाम के प्रति इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो दिन भर बैठ के जप कर सकती थी। और फिर लोगों ने जब देखा कि ये क्या चमत्कार हो गया, इस तरह की स्त्री अभी शुद्ध भक्त बन गई, वो अभी तुलसी के सामने बैठ के दिन भर जप करती है, तो सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सब लोग आके उसको प्रसाद देने लगे, किसी ने चावल दिया, किसी ने कुछ दिया कुछ दिया, ऐसे करके उस महिला को फिर कभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी खाने पीने के लिए। और वैसे भी वो खाती पीती बहुत कम थी क्योंकि ज्यादा समय हरि नाम में ही लगता था, जो भी थोड़ा कुछ रहता था उस वो ले लेती थी, बाकी कुछ परवाह नहीं। तो दो कोने हम देखते हैं, दुष्ट कोना और शुद्ध भक्त का कोना। दुष्टों को के ऊपर अच्छा प्रभाव होता ही नहीं और सद्भक्तों के ऊपर, अच्छे आगे बढ़े हुए भक्तों के ऊपर बुरे का प्रभाव पड़ता ही नहीं। समस्या किन की है? हम सब बीच वालों की है कि नहीं? इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें भेद करना चाहिए बिल्कुल। वैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भेद करते हैं, इसलिए हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। वो रहते भी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उनको पता था कि ये सही नहीं है, इसलिए वो वहां से चले गए और दूसरी जगह वो रहने लगे। तो ऐसे शुद्ध भक्त भी भेद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो बीच में रहने वाले होते हैं उनके लिए भेद करना बहुत आवश्यक होता है कि अच्छा क्या है, बुरा संग क्या है। अच्छे संग और बुरे संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में एक कहानी मैंने शायद एक बार आपको सुनाई होगी, क्या दो तोतों के बारे में, पोपट पोपटची गोष्टी सांगितली का कभी? हाँ बोला था कभी? हाँ बोला था ना, किसी को याद है? किसको याद है? याद है, बोलो थोड़े जोर से बोलो, इधर बैठ के, इधर इधर सर, सब लोग सुन सके।
दो
इधर ऊपर 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 बैठ।
दो तोते रहते हैं, तो एक तोता चोर के पास जाता है, डाकू के पास जाता है, वो एक खरीदी करता है उनसे, मालिक से, और दूसरा तोता एक साधु के पास रहता है, जाता है। तो वो तोता जो चोर डाकू के पास था वो हर रोज सुनता था उनका बातचीत, कि पकड़ो इसको, मारो इसको, ऐसा बात सुनता था। और जो तब उस स्थान का जो राजा है, राजा ऐसे ही प्रजा देखने के लिए जाता है घूमते हुए, और जब ये इस चोर के घर में प्रवेश करता है वैसे ही वो तोता बोलने लगता है, पकड़ो इसको, इसको लूटो, इसको मारो, ऐसा वो तोता बोलते रहता है। तो वो राजा सोचता है अरे कैसा तोता है, तोता भी ऐसा भयंकर है करके वो वहाँ से जाते हैं। फिर वो जाते थे जंगल में जाते हैं, वो साधु के कुटिया में जाते हैं और वहाँ पर भी एक तोता रहता है। वो तोता साधु राजा को देखते हुए बोलते हैं कि आओ आपका स्वागत है, आप क्या आसन है, बैठो, पानी पियो, ऐसा बहुत मधुर आवाज़ से बताते हैं। तो ये उनका जो संग था, जो साधु मुनि थे, वो हर रोज़ आदरातिथि जो अतिथि आते थे उनको आदरातिथि करते थे, तो वो सुनकर उनका संग उनके ऊपर हुआ। और जो दूसरा तोता दुष्ट चोर के पास था वो उस तरह का स्वभाव से बने। तो
थोड़ा अलग ये कर दिया लेकिन ठीक है, मूल बात वही है। कहानी इस प्रकार से है कि थोड़े साधु लोग होते हैं, उनके कोई साधु मित्र होते हैं जो एक आश्रम में रहते हैं दूर, तो वो निकल पड़ते हैं अपने आश्रम से उस आश्रम में जाने के लिए। तो उस आश्रम में पहुंचने के लिए उनको बहुत लंबा चलना पड़ता था, काफी चले 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 चले, फिर शाम हो गया और उधर एक जंगल में आए। तो अब सोचा भी रात में जंगल में जाना अच्छा नहीं, तो इधर कोई रहने का स्थान मिले तो देखना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक कुटिया है, तो कुटिया खाली था, तो कुटिया के अंदर गए कि रात को यहाँ आराम करेंगे, कौन है इधर, घर का मालिक कौन है, कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु अंदर आते ही ऐसे गाली उनको सुनने को आई, बहुत बुरी बुरी गालियां कोई दे रहा था। तो इनको बड़ा आश्चर्य हो गया, तो देखा तो अंदर एक तोता है पोपट, बहुत बुरी गाली दे रहा है निरंतर। तो उन्होंने सोचा कि अरे रात भर अभी ऐसे रहना पड़ेगा हमको, तो इधर रहने से अच्छा वो हम जंगल का खतरा ले ले, जंगल में जंगली जानवर होते हैं, जान का खतरा होता है, लेकिन वो जान का खतरा सहन करना अच्छा है, रात भर इसकी गाली सुनते बैठने से वो सहन नहीं होगा हमको। तो उस वो कुटिया से निकल पड़े और रात भर जंगल से चलते चलते गए, हालांकि खतरा बहुत था जंगली जानवरों का। फिर उस जंगल को पार करके फिर वो दूसरी जगह गए, वहाँ उनके मित्र का आश्रम था, तो वहाँ पे फिर आए। और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि यह एक पोपट तोता है, वो तोता बहुत ही श्लोक बोल रहा था, भागवत की श्लोक बोल रहा था, हरि नाम ले रहा था, इनको बड़ा अच्छा लगा। फिर जो वहाँ के साधु थे उनके मित्र लोग, उनसे पूछा इन साधुओं ने कि अरे ऐसे कैसे, वहाँ जब हम थे तो वो एक पोपट वहाँ था वो गाली दे रहा था, और यहाँ पे आ गए तो ये पोपट कितना अच्छा है, कितना श्लोक बोलता है, हरि नाम लेता है। तो फिर उन्होंने समझाया कि ये दो पोपट भाई भाई है, लेकिन एक पोपट को वो उस व्यक्ति के पास वो रहा, एक तोता हमारे पास आके रह गया, तो अभी संघ का प्रभाव देखो कैसे हो गया। वो जंगल में रहने वाला आदमी वो थोड़ा शिकारी था, तो हमेशा गाली गलौज करते रहता था, तो उसने वो गालियाँ सीख ली, और ये हमारे बीच में जो तोता रहने लगा तो उसको दिन भर हरि नाम सुनता सुनाई देता था, दिन भर भागवत गीता के श्लोक सुनाई देता था, इसलिए वो ऐसे बोलने लगा। तो संघ का प्रभाव हाँ बहुत गहरा होता है, इसलिए हम सबको संघ के ऊपर बहुत महत्व देना चाहिए। तो वेन के जो अनुयायी है उनसे दूर रहना चाहिए, और हरिदास ठाकुर के जो अनुयायी है उनके संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी वेन इतने दुष्ट था कि उनको उसको जान से मारना पड़ा ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि राजा रक्षक होना चाहिए सबका, परंतु जब राजा रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो फिर कौन सुधारेगा परिस्थिति को। तो वैदिक सभ्यता में एक व्यवस्था ऐसी थी कि ब्राह्मण जो होते थे, ऋषि मुनि जो होते थे, वो राजा को मार्गदर्शन देते थे। यदि राजा कोई गलत काम करे तो राजा को जाके सलाह देते थे, और राजा भी इतने धार्मिक होते थे कि वो ऋषि मुनियों की बात मानते थे, क्योंकि ऋषि मुनिगण कभी गलत नहीं बोलते थे, वो शास्त्रों पर आधारित बातें बोलते थे। तो इस तरह से सब कुछ राज्य का कारोबार बिल्कुल सही ढंग से चलता था। तो राजा वेन ऐसे नहीं करते थे, वो खुद उन्होंने अपने आप को भगवान और राजा भगवान करके घोषित कर दिया। तो जब ऋषि मुनियों ने देखा कि अभी ये आपातकालीन स्थिति हो गई है, साधारणतः ब्राह्मण कभी हस्तक्षेप नहीं करते राज्य के कारोबार में, नहीं हिंसा के कार्य में भाग लेते हैं, वो क्षत्रियों का काम होता है जाके युद्ध करना वगैरह, परंतु आपातकालीन स्थिति में कभी कभी ब्राह्मणों को भी ऐसे करना पड़ता है। परंतु ब्राह्मण जो ऋषि मुनि होते हैं वो अधिकांश तलवार आदि नहीं उठाते, बहुत कम। तो वो क्या करते हैं, वो केवल अपने वाणी से, हुंकार से नष्ट कर देते हैं शत्रु को, जो दुष्ट व्यक्ति है। ऐसे बहुत आवाज नहीं है, बस है गाड़ी से,
बस
बस है। बस तो जब वशिष्ठ मुनि वो तपस्या कर रहे थे, उनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, जिसकी जिसका नाम नंदिनी, और ये खूब दूध देती थी। एक बार राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों को लेकर जंगल में आए थे, तो वो आए यहाँ पर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। तो वशिष्ठ मुनि ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया, और इस नंदिनी कामधेनु गाय के द्वारा उनको बहुत बड़ा दावत खिलाया, और राजा विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इनके पास कोई साधन नहीं है, ये अकेले रहते एक गाय के साथ, और ये अकेली गाय ने हमारे इतने सारे सैकड़ों सैनिकों के लिए इतना बड़ा दावत बना दिया, और जो हमें चाहिए था वो सब प्रदान कर दिया। तो मैं तो राजा हूँ, तो ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, ये ऋषि मुनि को क्या आवश्यकता है ये सब चीज़ों की। तो विश्वामित्र मुनि ने जाके वशिष्ठ राजा से कहा कि मुनि से कहा कि हे मुनि, ये गाय मुझे दे दीजिए आप, क्योंकि आप जंगल में रहने वाले तपस्वी मुनि हैं, आपको ऐसे गाय की क्या जरूरत है, हम तो राजा हैं, भोगी लोग हैं, हम शहर में रहते हैं, राजमहल में रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये सब। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस गाय का प्रयोग भोग वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए नहीं कर रहा, मैं इस नंदिनी गाय को इसलिए चाहता हूँ कि इससे दूध आता है, दूध से घी निकलता है, और घी का प्रयोग मैं फिर यज्ञ आदि में कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए यह गाय बहुत आवश्यक है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो बहुत कहने पर भी जब वशिष्ठ मुनि ने नहीं मानी राजा की बात, तो राजा तो ज्यादातर अहंकारी होते हैं ना, अरे मैं इतना बड़ा राजा तुम मना करते हो, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उनके सैनिकों से कहा छीन के ले जाओ इस गाय को। तो उसी समय पे नंदिनी गाय ने ही ऐसे सैनिक आदि तैयार कर लिए, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए, जिससे कि जितने भी सैनिक इनके साथ में थे राजा विश्वामित्र के साथ, वो सब खत्म हो गए। वशिष्ठ मुनि ने केवल अपने हुंकार से ये सब कर दिया। ऐसे हुंकार मतलब बोल देना। अभी हम लोग करते हों कुछ होता है। कोई हमारे सामने शेर राजा हूं कहे तो कुछ होता नहीं। लेकिन ये पहले के ऋषि मुनि ऐसे होते थे, कलयुग में कुछ चलता नहीं। हाँ, तो उन्होंने केवल ऐसे हुंकार किया, सब नष्ट हो गए। तो ऐसे ताकत हुआ करती थी, इसको ब्रह्म तेज कहते थे। तो उसी प्रकार से वेन के साथ में भी ऐसे ही किया। जब वेन भी इतना दुष्ट बन गया और कोई उपाय नहीं रहा, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, हुंकार ऐसे कर दिया, वो राजा वेन खत्म। फिर राजा वेन के शरीर से, उनकी जांघों से वो निकाल के, उसका मंथन करके एक विशेष विधि से उन्होंने और एक शरीर को निर्मित किया, बाहुक। और आगे चल के देखेंगे कि शरीर में क्या था, कौन थे, कौन से गुण आए उसमें, आगे चल के फिर और किसका जन्म हुआ, आगे की बात मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो अब कल परसों आपको आना पड़ेगा जानने के लिए। हर दिन आएंगे तो ये रहस्य का खुलासा हो जाएगा। तो अभी जांघों का मंथन करने से एक शरीर को उत्पन्न कर दिया, एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया। हम सब जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो ये शरीर से कैसे एक दूसरा शरीर और व्यक्ति उत्पन्न हो गया, ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रकृति में भी हम देखते हैं। जब एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा वो गांडूर बोलते हैं ना, अर्थ उसको काटते हैं कभी कभी तो क्या होता है,
दूसरा बन जाता
है। तो एक ही शरीर को काट के दो, ऐसे बहुत छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। आप में पाठशाला में कौन कौन है, दसवीं कक्षा में कौन है, 8, 9, 10, 11 कक्षा में है कोई, सब विज्ञान विज्ञान पढ़ा है, दसवीं में है विज्ञान, विज्ञान है ना। तो मराठी मध्ये अमीबाला काय म्हणतात, अमीबा माहित आहे सर्वांना, अमीबा म्हणजे काय कोणी सांगू शकता काय, काय आहे अमीबा म्हणजे,
एक पेशीय सूक्ष्म जीव,
एक पीछे
एक पेशी,
पेशी, पेशी एक पेशी है सूक्ष्म जीव। वाह, इतना सुंदर उत्तर दिया। बिल्कुल सही, एक पेशी है सूक्ष्म जीव, एक पेशा है बस उसके अंदर। लेकिन हम दूसरे जो शरीर होते हैं बहुत पेशी होते हैं उसमें, पेशी मतलब समझ गए ना, सेल्स। एक पेशी सूक्ष्म जीव, वो एक अमीबा, वो क्या करता है, अपने आप को दो करता है और वो दूसरा अमीबा बन जाता है, फिर वो अमीबा भी अपने आप को दो में करेगा, ऐसे बढ़ जाते हैं। तो एक शरीर का दो शरीर होना, ऐसे गांडूल उसमें भी ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से जो भी जीव हैं, जिनको उस प्रकार का शरीर प्राप्त होना है कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार, वो उस पेशी में चले जाता है और उसको फिर वो शरीर मिल जाता है। जैसे गांडूल को खत, वो गांडूल को काटने से, कीड़े को काटने से वो दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है, वो जीवित हो जा रह जाता है। तो उसके अंदर जो आत्मा है, कहीं से जिसका भाग्य है ऐसे कीड़े का शरीर प्राप्त करना, तो उसको वो शरीर प्राप्त हो जाता है भाग्य के अनुसार।
परंतु विशेष रूप से हम किसी ऐसे अन्य प्राणी से या मनुष्य से करना चाहेंगे तो ये बहुत एक सूक्ष्म विज्ञान है जो कलयुग में उपलब्ध नहीं है। केवल उस काल के ऋषि मुनियों को पता था, इसलिए वो ऐसे सब कर सकते थे और करते भी थे, तो बहुत ही विरला ऐसे विशेष विशेष परिस्थितियों में ऐसे करते थे, अन्यथा वो नहीं करते थे ऐसे साधारणतः। जैसे नारद मुनि के पास वो विज्ञान है कि कैसे एक बार आत्मा शरीर को छोड़े, शरीर की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाए तो कैसे आत्मा को वापस बुलाना शरीर के अंदर, वो विज्ञान और वो ताकत नारद मुनि में थी। और हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के पुत्र के बारे में ऐसे ही हुआ, बच्चे की मृत्यु हो गई और राजा और रानी दोनों फूट फूट के रो रहे थे, तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको सांत्वना देने का प्रयास किया परंतु उन्होंने नहीं माने उनकी बात, तो फिर उन्होंने पुरुष आत्मा को बुला दिया। वो इतनी शक्ति नारद मुनि में थी, आधुनिक काल में किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है। तो आत्मा फिर से अंदर आई शरीर में, अब थोड़ा उपदेश दिया माता पिता को, फिर से प्राण छोड़कर शरीर छोड़कर चले गए। तो इसलिए ये शरीर के अंदर जब तक आत्मा नहीं है वो जीवित नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने वैष्णव ये मुनियों ने वेन के जांघों से एक शरीर उत्पन्न किया और उसके अंदर एक आत्मा आ गई और उसके कारण ये एक व्यक्ति बन गया बाहुक। वैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि हमारे शरीर में बहुत कितने आत्माएं हैं कोई बता सकते हैं, हमारे शरीर में कौन बता सकते हैं, हमारे शरीर में आत्मा कितने हैं? अनगिनत, अनगिनत मतलब हम अनगिनत आत्मा, हम आत्मा नहीं है, हम आत्माएं हैं। कैसे
अंदर बहुत सारे जोन होते हैं, उनके अंदर भी आत्मा है।
अच्छा, तो हम जो कहते हैं ना मैं मतलब ये मेरे शरीर को चलाने वाला एक आत्मा है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर एक ही होता है बस, परंतु बस के अंदर सवारी बहुत हो सकते हैं, है कि नहीं? अभी बड़ा बस गया ना यहाँ से, तो उसके अंदर कितने 20-30 लोग तो बैठे होंगे, लेकिन गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, मालिक एक ही, चलाने वाले एक लेकिन बैठने वाले अनेक। उसी तरह से इस शरीर को चलाने वाले आत्मा एक, परंतु अन्य बहुत से प्राणी हमारे शरीर में है, छोटे छोटे ऐसे कीटाणु हैं, थोड़े अच्छे होते हैं थोड़े बुरे होते हैं। हमारे पचन कार्य के लिए भी ऐसे कीटाणुओं की आवश्यकता होती है, कभी कभी बुरे भी होते हैं जिससे फिर रोग हो जाता है। तो हमारी आत्मा है जो हृदय के स्थान में निवास करती है और जो मुख्य आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है वो अलग बात है, लेकिन शरीर के अंदर ये बहुत सारे कीटाणु हैं, उन सब में आत्मा है, परंतु इतने ही आत्माएं हैं कि और भी हैं। हमारी आत्मा और फिर छोटे छोटे कीटाणु हैं उनकी आत्मा, और भी कोई आत्मा है?
परमात्मा,
ठीक, वो तो भगवान है। और कोई आत्माएं हैं? जो उत्तर दिया अनगिनत वो ठीक है, लेकिन जो हमारे कीड़े हैं कीटाणु हैं शरीर में बहुत संख्या ज्यादा है, फिर भी उनके अतिरिक्त भी और कोई आत्माएं हैं क्या हमारे शरीर में?
कीड़े के अंदर का अंदर आत्मा
कीड़े के अंदर जो आत्मा है वो तो गिन लिया ना हमने, नहीं, हर एक पेशी में आत्मा है, हर एक सेल के अंदर एक आत्मा है, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा है। लेकिन वो प्रमुख आत्मा नहीं है शरीर की, इसलिए शरीर के मरने के बाद भी कभी कभी ये थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन इन पेशियों को पोषण मुख्य शरीर से मिलता है। जब मुख्य आत्मा चली जाती है शरीर से, तो फिर इसका पोषण जो है ग्रहण करने की शक्ति निकल जाती है। इसलिए फिर ये जो पेशी है, सेल्स है, इनको पोषण नहीं मिलता है, फिर वो मर जाते हैं। फिर वहां से जब वो मर जाते हैं, फिर उनकी जो आत्मा है वो निकल जाती है। जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये प्रसाद ग्रहण करने का फायदा जो है न केवल हमको होता है, मतलब हमारी मुख्य आत्मा को, परंतु हमारे शरीर में जितने कीटाणु हैं उनको भी फायदा होता है, और हर एक पेशी में हमारे जितने आत्मा हैं उन सबको भी फायदा होता है। देखो कितने लोगों को फायदा होता है। हाँ, तो एक महत्वपूर्ण बात है, हर एक पेशी के अंदर आत्मा है। ऐसे एक संवाद भी है प्रभुपाद जी का, परंतु जब मुख्य जो आत्मा है, जिसको हम कहते हैं मैं, वो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर मर जाता है, परंतु पेशियों के अंदर आत्मा रहती है थोड़े समय के लिए। जब वो पेशी को भी पोषण मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप स्वतंत्र होकर जी नहीं सकती है वो पेशी, फिर वो आत्मा भी ऐसे निकल जाती है। लेकिन जब वो एमीबा है या वो कीड़ा है गंडोल, उसका करने से उतनी क्षमता उस शरीर में रहती है कि वो जीवित रह सके, इसलिए आत्मा भी अंदर रहती है। मुख्य आत्मा जैसे उसका किसका प्रारब्ध है, वैसे वो उस शरीर में चले जाती है। तो इस तरह से ये सब सूक्ष्म विज्ञान की कैसे एक मृत शरीर के मंथन करके विशेष विधि से एक और शरीर की उत्पत्ति की जाए और कैसे उसमें एक आत्मा को लाया जाए, ये सारा विज्ञान उस समय के ऋषि मुनि जानते थे। आजकल के वैज्ञानिक ऐसे नहीं जानते। प्रभुपाद जी ने चेतावनी दी थी वैज्ञानिकों को कि आप बोलते हैं कि जीवन अणुओं से उत्पन्न होता है, रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है, तो आप उत्पन्न करा के क्यों नहीं दिखाते। लेकिन उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जीवन आत्मा से आता है। किसी अचेत पदार्थों से नहीं, जड़ पदार्थों से नहीं। हाँ, ठीक है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये बाहुक कौन है, और आगे चल के फिर ऋषि मुनियों ने राजा वेन के शरीर के साथ क्या किया इत्यादि। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? हाँ,
आपने बोला कि कलयुग में,
हाँ
कलयुग में ब्राह्मणों के पास शक्ति नहीं है कि वो हुंकार से किसी को मार सके या किसी का वध कर सके।
हाँ,
तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि फ्यूचर में इस्कॉन के ब्राह्मण ऐसे होंगे कि मंत्र शक्ति से अग्नि प्रज्वलित कर सकेंगे। तो महाराज प्रश्न ये है कि क्या फ्यूचर में जाके कलेक्टिवली सोसाइटी इतना प्यूरिफाइड हो जाएगा कि 10,000 साल तक ऐसे वैष्णव या ब्राह्मण देखने के लिए मिलेंगे, या फिर वही जो प्रभुपाद ने बोला कि हमारा सिद्धि ये है कि हम जगाई मदाई जैसे लोगों को हमारे इस्कॉन में भक्त बनाने का।
कम से कम हमारे पीढ़ियों में तो हमारे जीते जी ऐसे नहीं दिखेंगे हमको। बहुत ऐसे पीढ़ी वैष्णव की होती रहनी चाहिए, तब शुद्ध ऐसे कोई एक बिरला कोई ऐसे हो भी जाए, लेकिन इस कलयुग में संभावना बहुत कम है। कलयुग में ब्राह्मण क्या ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं कुछ, अभी केवल वैष्णव बनना बस। और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ये सब है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि वर्णाश्रम पद्धति की स्थापना हो, कि जिसका जैसे स्वभाव, परंतु इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए बचपन से, पूर्व जन्म से, गर्भाधान संस्कार शुरू करके इसके लिए दो तीन एक दो पीढ़ियां तो जाएंगी। अभी हमारी संस्था की इतनी तैयारी नहीं है, अभी हमारी संस्था बहुत छोटी है, कम उम्र की है। धीरे 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 जब ऐसे होंगे तो फिर जब बच्चे होंगे तो जन्म लेते लेते एकदम पता चलेगा कि ये आगे चल के बहुत कुछ करेगा। और कोई प्रश्न?
एक प्रसंग में हम देखते हैं कि
थोड़ा जोर से सब लोग सुनाई दे प्रश्न
क्या है। प्रसंग में हम देखते हैं कि राजा वेण दुष्ट था, तो ऋषियों ने हुंकार से उनको मार डाला। तो हिरण्यकश्यप के प्रसंग में ऐसा क्यों नहीं हुआ, या अन्य दुष्ट राजा जब थे उस कथाओं में हम ऐसे श्रवण नहीं करते कि ऋषियों ने ऐसा किया?
क्योंकि प्रश्न सुना सबने, क्योंकि भगवान नरसिंह देव का प्रकट होने का कारण हिरण्यकश्यप का वध नहीं था। उनका प्रकट होने का कारण था प्रह्लाद की रक्षा करना, और प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। मुख्य उद्देश्य भक्त की रक्षा होती है, भक्त की रक्षा ये भगवान का मुख्य कारण होता है। असुरों का वध करने से अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की रक्षा, परित्राणाय साधुनाम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विनाशाय च दुष्कृताम, ये दूसरे श्रेणी का काम है। वैसे भगवान को आने की जरूरत नहीं है इधर असुरों का वध करने के लिए, भगवान की शक्तियों के द्वारा ही असुरों का वध किया जा सकता है। परंतु वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो वेण के समय में ऐसे कोई भक्त की रक्षा की बात नहीं थी, वो दुष्ट राजा ही था ऐसे, इसलिए फिर ऐसे ऋषि मुनियों ने किया। और दूसरी बात, कभी कभी भगवान ऐसे असुरों के साथ युद्ध करके वीर रस का आस्वादन भी करते हैं, तो भगवान की अपनी इच्छा रहती है। तो इधर आके ऐसे असुर के साथ युद्ध करके अपने रस का आस्वादन करते हैं, वीर रस का। और तीसरी बात है कि उनके भक्तों के लिए कुछ श्रवणीय ऐसे लीलाएं प्रदर्शित करके जाते हैं, उनके श्रवण कीर्तन करने के लिए विषय प्रदान करके जाते हैं। इसलिए इतने करोड़ों सालों बाद भी आज हम हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह देव ने किस तरह किया वो आज भी पढ़ते हैं। तो हमारी भक्ति, आने वाले पीढ़ियों की भक्ति बढ़े, उनको कुछ सुनने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए विषय रहे, सुंदर दिव्य विषय, इसलिए भगवान ऐसे करते हैं। आए तो
इसके पिछले श्लोक में तात्पर्य
थोड़ा दो जोर से सब लोग सुने प्रश्न।
पिछले 42वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वीर्य था, अमोघ वीर्य करके श्लोक में थे, तो उस जो क्योंकि ध्रुव महाराज के वंश में आ रहे, तो ऐसे दुष्ट मतलब कि उनका परिवार में ऐसे भक्त आएंगे और भी ये दुष्ट होने के बाद भी, तो इसलिए उन्होंने उसको मंथन करके बाद में ये किया। तो ऐसे वीर्य फिर जब एक परिवार में ऐसे दुष्ट राजा होते हैं तो फिर भी वो ऐसा संभावना होता है कि फिर से अच्छे अच्छे भक्त आएंगे?
हाँ, ऐसे हो सकता है और होता भी है, और वेण के साथ हुआ भी ना, इसलिए ये रहस्य परसों थोड़े देर में खुलेगा ना अभी इधर, और आगे चल के भी और आएंगे। तो ऐसे होता है कभी कभी, जब अमोघ वीर्य, ये सही अच्छा बात है कि जब एक प्रधानतः सब अच्छा होता है, वंशज वंशावली अच्छी होती है, तो आगे चल के बड़े दुष्ट आ भी जाए लेकिन फिर भी वो रहेगा, पुराना जो उसका प्रभाव है पड़ा रहेगा, फिर वो अच्छे संतान आएंगे आगे चल के भी कभी।
हमारा डेथ पर्सोनिफाइड मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु धर्म यमराज ही
नहीं यमराज नहीं यमराज नहीं यमराज धर्मराज है मृत्यु अलग यमराज की पुत्री तो यमुना है उनकी बहन यमुना है हाँ सूर्यदेव की पुत्र पुत्री है तो ये साक्षात मृत्यु तो यमराज नहीं है मेरे ख्याल से मृत्यु मृत्यु धावती पंचमह ये मृत्यु के ही कोई देव होंगे जो मृत्यु का देते हैं यमराज दंड देते हैं सबको ऐसा मुझे लगता है
महाराज जी सेम है क्या मृत्यु भगवत
गीता हाँ वो तो मूल रूप से भगवान सब कुछ है ना मूल कारण तो भगवान ही है हर चीज के लिए हर चीज का संहार भगवान ही करते हैं
मृत्यु
हाँ
मृत्यु अगर देवता है
देवता नहीं ऐसे विशेष प्रकार के व्यक्ति जो जिनको एक जिम्मेदारी दी जाती है जैसे कली चार युगों के एक कोई अधिष्ठाता होते हैं कलयुग के भी एक होते हैं परीक्षित ने दंड दिया ना लेकिन उसको देव नहीं कह सकते उसका स्वभाव भी थोड़ा ऐसा ही था ना कली मूर्तिमान कली का स्वभाव कैसे था तो उसी तरह से मृत्यु के मूर्तिमान जो योग प्रतिष्ठाता है तो स्वभाव थोड़ा टेढ़ा
सूक्ष्म जीव के बारे में बोल रहे हैं जीवों के दो अलग विभाजन अलग होने के बाद में उनको दो जीव में
उसका दो प्राणी हो जाते हैं
उस वक्त उसका आत्मा कैसे
आत्मा हमेशा यहाँ वहाँ रहते हैं भाग्य से जब किसी आत्मा को एक शरीर मिलना होता है कर्मणा दैव नेत्रेण तो परमात्मा के व्यवस्था से जिस आत्मा को जैसा शरीर मिलना है उसके प्रारब्ध के अनुसार ऐसी व्यवस्था करते हैं भगवान तो जब वो विभाजन होता है शरीर का तो उस नए शरीर के लिए आत्मा तैयार होती है तो वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है भगवान की योजना से यदि नहीं करेगी आत्मा ऐसे प्रवेश तो फिर वो नहीं जीवित रहेगा ठीक है हाँ
आप बोल रहे कि जैसे जब शुद्ध भक्त अपने ये कृपा से दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति को भक्त बना देते हैं तो हम इंसिडेंट देखते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर का आप बताएं हरिदास ठाकुर जो लक्ष्मी राय जो आती है तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाती है और उसमें हरिदास ठाकुर चाहते हैं और वो लगते भी नहीं वो ऐसा सोच के नहीं है कि मैं एक भक्त बनूं बोल के ऐसा एक मूड में नहीं है उनका जो इंटेंशन रहता है दूसरा इंटेंशन से आई होती है और हरिदास ठाकुर लेकिन इच्छा करते हैं और वो मना देते हैं और सिमिलरली दूसरा किस्म विदुर जी हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं वो भी इच्छा किए हैं सुधर जाए बोल के लेकिन उनका भी केस है वो दुर्योधन भी नहीं चाहते कि मैं नहीं बदलूंगा बोल के दोनों भी एक
भक्त बन जाते हैं क्योंकि सब अलग अलग व्यक्ति है ना लेकिन एक बात है कि दुर्योधन के हृदय में अहंकार बहुत ज्यादा था वो बहुत दुष्ट था बहुत ज्यादा दुष्ट अपराधी था ये व्यक्ति खुले हृदय से आई थी हालांकि गलत काम के लिए आई थी वो उसका पेशा ही ऐसे था और वो रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति ने ऐसे उसको बोला था उसको दिया था तो वो आ गई एक के पास जाओ क्या दूसरे के पास जाओ क्या उसके लिए एक ही बराबर था उस ये उद्देश्य नहीं आए थे कि भक्त करना भक्त को ये करेंगे ऐसे नहीं उसके लिए एक और कारण था इसलिए उसका हृदय का परिवर्तन हो गया तो हरिदास ठाकुर का स्थान तो बहुत विशेष कभी कभी ऐसे हो जाता है स्वयं भगवान भी किसी को भक्त नहीं बनाते नहीं बना सकते ऐसे प्रतीत होता है भगवान श्री कृष्ण ने भी तो प्रयास किया ना दुर्योधन को बनाने के लिए तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है। चाहते तो भगवान दुर्योधन को भक्त बना सकते ना, फिर ना कुरुक्षेत्र का युद्ध होता, ना कुछ होता, ना भगवद गीता होती, ना हम आज यहाँ बैठे होते। बराबर। और कोई प्रश्न?
हिरण्यकशिप और दुर्योधन हालांकि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, पर वैदिक सभ्यता भी नहीं, पर देवताओं की उपासना इत्यादि में विश्वास रखा करते थे, लेकिन वेन आरक्षक वो भी नहीं था, तो उनमें भी निम्न श्रेणी,
उनसे भी निम्न श्रेणी का था। आदर्श दुष्ट। दुष्ट किसी को बनना है ना, तो कैसे बनना चाहिए वो वेन से।
लेकिन ये असुर में नहीं गिनती ना, नास्तिक थे पर असुर नहीं थे, और वो असुर थे और नास्तिक शब्द थे ऐसा कुछ
नहीं। नहीं, वो लोग भी तो नास्तिक थे। नास्तिक मतलब क्या, परम सत्य भगवान को नहीं मानते। वेन भी तो नहीं मानता था, तो विविधता होती है असुरों में भी। असुर कौन होता है जो नहीं मानता है भगवान? सुर और असुर। विष्णु भक्ति सुर है, असुर विपर्यय है, तद विपर्यय है। तो जो उसको विष्णु भक्त नहीं है वो असुर है। हाँ, हरे राम।
पहले आप शुरू किया जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है तो उनको कोई भी बदल नहीं सकता, तो ये बदलना चाहते हैं किसका हाथ में है? यदि हमारा इच्छा कोई बोले या भगवान से या भगवान से हम बदलना नहीं चाहते, यदि सेम उद्धव प्रभु का क्वेश्चन ही है सेकंड।
देखो, जब एक सोया हुआ व्यक्ति होता है उसको आप जगा सकते हैं, जब वो सोने का नाटक कोई व्यक्ति करता उसको नहीं जगा सकते। नहीं, इतना भी कोशिश करो नहीं जगा सकते आप। उसी तरह से किसी का इच्छा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। उसकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी भक्त बनना चाहता हूं, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा ना, यथेच्छसि तथा कुरु। अब मैंने तो बोल दिया उपदेश, अब तुम्हें जैसा चाहिए तुम वैसा करो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हाँ, सबका तबीयत ठीक है?